ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्तश्चैतन्यचरितामृतं वैराग्यविद्या निजभक्तियोग शिक्षार्थमेकः पुरुषः पुराण श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। सो सभी उपस्थित भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है और हिज ग्रेस मंगल रस प्रभु और हिज ग्रेस अच्युत गिरिधारी प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए और हमारे अपने शुद्धिकरण के लिए हम जो लास्ट में क्लास में प्रसंग लिए थे श्री चैतन्य चरितामृत से उसी को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट एपिसोड है चैतन्य चरितामृत में उसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण का वर्णन किए हैं और बहुत ही डिटेल में है। अगर उतनी डिटेल में चर्चा करने जाए तो कई सत्र लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जैसे लास्ट टाइम हमने बताया था कि जब चैतन्य महाप्रभु ने डिसाइड किया कि वो प्रचार के लिए जाना चाहते हैं साउथ इंडिया के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अकेला जाना चाहूंगा, किसी को साथ में नहीं ले जाऊंगा, और अलग अलग भक्तों का दोष बताकर और वे उनके गुण को प्रकट कर रहे थे और उन्होंने कह दिया कि मुझे किसी के साथ में नहीं जाना है। तो भगवान नित्यानंद प्रभु के आग्रह पे उन्होंने कृष्णदास एक व्यक्ति को साथ में ले जाने के लिए उन्होंने बात मानी और फिर वहां से वो गए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर जाके और उन्होंने उनको कहा कि मैं आपकी आज्ञा लेना चाहता हूं और आपकी आज्ञा लेके मैं साउथ इंडिया जाना चाहता हूं। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हम कभी भी किसी जर्नी पे किसी यात्रा पे जाए तो भक्तों का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये सुना कि चैतन्य महाप्रभु जाएंगे तो उनका संग विच्छेद हो जाएगा उनसे, तो उनको काफी झटका लगा और उन्होंने कहा कि अरे बड़ी मुश्किल से आपके जैसे भक्त का और भगवान का संग मिलता है, अगर आप ऐसे हमको छोड़ के चले जाओगे तो हमारा क्या होगा। और उन्होंने कहा कि शिरे वज्र पड़े यदि पुत्र मरी जाए, कि मेरे सिर के ऊपर अगर वज्रपात हो जाए या मेरा पुत्र मर जाए तो भी मैं सहन कर लूंगा, लेकिन आपका संग विच्छेद मुझसे सहन नहीं होगा, तो आप कृपया मत जाइए, कुछ दिन यहाँ पर और रह जाइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की बात को मानकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका मान रखते हुए वहां पर रुक गए, लेकिन केवल 5 दिन रुके, ज्यादा नहीं रुके। उन्होंने 5 दिन तक श्री सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना संग दिया और फिर वहां से आगे निकल गए। और आगे निकल के और बेड़ा कीर्तन के अंदर अलारनाथ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही घमासान कीर्तन किया और कीर्तन का उद्घाटन किया वहां पे, मतलब हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन किया। क्योंकि इसके पहले जो कीर्तन वो करते थे वो शिवास आंगन में करते थे अपने नित्य संगी भक्तों के साथ में, अपने पार्षदों के साथ में, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इतना घमासान कीर्तन किया कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसमें लिखते हैं कि चौथ की ते सब लोग बोले हरि हरि, प्रेमावश्य मध्य नृत्य करे गौर हरि, केहो बोले केहो नाचे श्री कृष्ण गोपाल, और प्रेमेते भाषिला सब स्त्री वृद्ध अबाल। के इतने सारे जो लोग थे, चाहे वो स्त्री थी चाहे वृद्ध थे चाहे वो अबोध बालक थे, सारे के सारे उस कीर्तन में लग गए। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से घमासान कीर्तन करते थे कि उनके कीर्तन को देख के लोग चकाचौंध हो जाते थे और एकदम आश्चर्यचकित हो जाते थे। प्रेमा वैसे कैला बहुत गान नर्तन, देखी चमत्कार होइला सब लोके रमन, सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु गोल्डन अवतार सुनहरे भगवान, वो जब अपने दो हाथ को ऊपर उठाकर और जब आसमान में जब छलांग लगाते थे तो सोना ते पर्वत के ने धूले ते लोटाए, ऐसा लगता था कि एक सोने का पर्वत जो है वो उड़ रहा है, और इतना आनंद लोगों को आता था उसमें। श्री चैतन्य महाप्रभु फिर वहां से और निकले और बिना पीछे देखे एक मत्त सिंह की तरह अपनी साउथ इंडिया यात्रा पे, दक्षिण भारत की यात्रा पे वो चलने लगे। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी कि जिस प्रकार से एक मतवाला सिंह चलते हुए जाता है, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु आगे जा रहे थे और अपने दोनों हाथों को ऊर्ध्व हस्त उठा के और गाते गाते जा रहे थे, कृष्णा 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 हे राम राघव रक्षा माम, कृष्णा केशव पाही माम, मत्त सिंह प्राय प्रभु करिला गमन, प्रेमावश याए करे नाम संकीर्तन। तो कहते हैं कि एक मत्त एक सिंह की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु चलने लगे और जाके और जो भी उनको रास्ते में मिलता था उनको कहते थे कि बोलो हरि हरि। और वो कहते हैं कि कटक्षण रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय करिया तारे शक्ति संचारिया। तो हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु एक भक्त का आलिंगन करते थे और उसमें पूरा शक्ति का संचार कर देते थे। ही वुड एम्ब्रेस एंड एम्पावर द डिवोटी और उसके बाद दैट डिवोटी विल एंजॉय। और वो फिर क्या होता था कि वो भक्त बन जाता था और पूरा का पूरा जो शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु की उस भक्त में आ जाती थी और वो भक्त हरि हरि करता हुआ अपने गांव में जाता था, उसको दूसरे लोग देखते थे, उसके आलिंगन करते थे, वो भक्त बन जाते थे। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक संक्रमण के भांति था कि जिस प्रकार से संक्रमण फैलता है उसी प्रकार से वो मल्टीप्लाई इफेक्ट होता गया और मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह ना एक भक्त से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और सारा का सारा गांव भक्त बन गया। फिर उस गांव में दूसरे गांव से व्यक्ति आया, वो उनको देख के प्रभावित हो गया, वो भक्त बन गया, फिर उसको अपने गांव में गया और वहां सभी लोगों को भक्त बना दिया। तो पूरा का पूरा गांव श्री चैतन्य महाप्रभु कन्वर्ट करने लगे और इस प्रकार से कन्वर्ट करके ये पूरा एक्सप्लोजन होने लगा, हरे कृष्ण एक्सप्लोजन, और ये आंदोलन चलने लगा और हर कोई हर एक व्यक्ति जो था वो वहां दक्षिण भारत में और भक्त बन गया। और उसके बाद वहां से आगे निकलते हुए और फिर चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल के और आगे बढ़ते जाते हैं, तो उसका काफी विस्तृत वर्णन है, उतना डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन खाली मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि वहां से निकल के और श्री चैतन्य महाप्रभु पहले कुर्म क्षेत्र में जाते हैं और वहां पे कुर्म ब्राह्मण से उनकी मुलाकात होती है, उनका उद्धार करते हैं, उनके साथ बहुत चर्चा करके। और फिर एक दूसरा ब्राह्मण होता है जिसका नाम होता है वासुदेव, और वो वासुदेव को कुष्ठ रोग हो गया रहता है, वो लेप्रसी से ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लेप्रसी, तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसको अपनी कृपा प्रदान करते हैं और पूरा का पूरा कुष्ठ रोग जो होता है वो दूर हो जाता है उसका, उसको जब आलिंगन करते हैं। तो एक बार मैं महाराज का क्लास सुन रहा था, परम पूज्य राघवनाथ महाराज बोल रहे थे कि ये जो वासुदेव था उसके शरीर के अंदर इस प्रकार का कुष्ठ रोग हो गया था कि उस शरीर के अंदर पूरा का पूरा ना एक खून और पित्त जो पस वगैरह जो होता है पीप, वो सब बाहर निकलता था और इतना दुर्गंध आता था उसके अंदर। इंडीड उसके शरीर के अंदर कीड़े हो गए थे और वो कीड़े कई बार नीचे गिर जाते थे, लेकिन वासुदेव जो था इतना भक्त था, विनम्र भक्त था कि उस कीड़े को वापस उठा के अपने शरीर में रख लेता था, लेकिन कोई भी वासुदेव के पास में आना नहीं चाहता था क्योंकि इतनी दुर्गंध आती थी, सब उससे दूर भागते थे। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया तो क्या हुआ, वासुदेव पूरी तरह से ठीक हो गया। हाँ, तो सबसे पहले तो वो चैतन्य महाप्रभु से दूर रहना चाहता था कि वो उनका आलिंगन न करे या उनके पास में ना आवे, लेकिन जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उसका आलिंगन किया उसका सारा कुष्ठ रोग दूर हो गया और वो बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब ऐसा आभावान प्रकट हो रहा था जैसे कि चमक रहा हो। तो महाराज उस लेक्चर में वहां पे प्रश्न पूछते हैं, वो कहते हैं कि सोचो अगर तुमको इस प्रकार का कुष्ठ रोग हो और चैतन्य महाप्रभु अगर तुमको आके एम्ब्रेस करे और यदि आप ठीक हो जाओ तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको अच्छा महसूस होगा ना। तो सभी ने बोला हरि बोल, हाँ महाराज ना। तो उन्होंने कहा कि लेकिन वासुदेव वॉज मिजरेबल व्हेन ही बिकेम हैप्पी, मतलब व्हेन ही गॉट क्योर्ड। तो महाराज ने कहा कि जब वो ठीक हो गया तो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? क्योंकि वो सोचने लगा कि अभी लोग मुझसे आके कहेंगे कि देखो तुमको क्या कृपा प्राप्त हुई है, चैतन्य महाप्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त हुई है कि तुम्हारा सारा कुष्ठ रोग चले गया, तुम एकदम ठीक हो गए और लोग आके ग्लोरीफाई करेंगे। हाँ, तो एक जो विनम्र भक्त होता है वो इस चीज से घबराता है। तो उसने कहा कि सभी लोग आके मेरा ऐसा करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से लोगों की नजरों से दूर हो जाऊं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वासुदेव का उद्धार करने के बाद फिर वहां से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद ज्वाला नरसिम्ह उसका दर्शन करके वो वहां से गोदावरी नदी पे जाते हैं विद्यानगर में, जहां पर रामानंद राय से उनकी मुलाकात होती है और सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा था कि आप जरूर रामानंद राय से मिलना। और रामानंद राय जो है ये विशाखा, जो ललिता विशाखा है भगवान की जो सखिया है, विशाखा और अर्जुन उसका एक कंबाइन इनकारनेशन है और बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का उनके साथ बड़ा वार्तालाप होता है और चैतन्य महाप्रभु उनके मुख से बहुत कुछ बुलवा लेते हैं और उससे सीखते हैं, लेकिन वो जो डिस्कशन है वो काफी ऊंचे लेवल का है। तो यहाँ पे अभी हम उसको कवर नहीं करेंगे, तो हमारी इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन ये एपिसोड को छोड़ के मैं नेक्स्ट एपिसोड पे जाऊंगा। तो विद्यानगर के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गौतमी गंगा में जाते हैं, मल्लिकार्जुन जाते हैं, अहोलव नरसिम्ह के पास जाते हैं, स्कंद क्षेत्र में जाते हैं, त्रिमता में जाते हैं, बौद्ध स्थान में जाते हैं, फिर वहां से तिरुपति तिरुमला जाते हैं, फिर वहां से पान नरसिम्ह शिवा कांची विष्णु कांची कांचीपुरम में जाते हैं, फिर वहां से आगे निकलते हुए और श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचते हैं कावेरी रिवर में, और जहां पर रंग क्षेत्र में पहुंचते हैं वहां पर श्री वेंकट भट्ट के साथ उनकी मुलाकात होती है जो श्री वैष्णव होते हैं बहुत अच्छे, और उनके घर श्री चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रह के चतुर्मास बिताते हैं। और वेंकट भट्ट के ही एक पुत्र होते हैं छोटे गोपाल, जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा प्रदान करते हैं और वो आगे जाके हमारे षड गोस्वामी में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बनते हैं, जिनके वजह से श्री राधा रमन जी का प्राकट्य होता है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी है वो। तो उसके बाद काफी वर्णन है श्री चैतन्य महाप्रभु का, तो मैं श्रीरंगम पे वापिस आऊंगा, लेकिन कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि वो श्रीरंगम छोड़ के श्री चैतन्य महाप्रभु और आगे ऋषभ पर्वत पे जाते हैं जहां पे परमानंदपुरी से उनकी मुलाकात होती है, और फिर वहां से वो आगे जाते जाते रामेश्वर और श्रीशैल पर्वत पहुंचते हैं जहां पे वहां पे शिव जी के मंदिर में जाते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ते हुए वो एक रामचंद्र जी के भक्त होते उनसे मिलते, फिर आगे जाके वहां से कृतमाल नदी होती है वहां जाते, फिर वहां से आगे महेंद्र शैल पे जाते जहां पे परशुराम जी का वो दर्शन करते, फिर वहां से आगे बढ़ते हुए सेतुबंध रामेश्वरम पे जाते हैं जहां पे धनुष कोड़ी पे जाके या धनुष तीर्थ जिसको बोलते हैं वहां पर वो स्नान करते हैं और रामेश्वर के मंदिर में जाके और वहां पे पूजा आराधना करते, फिर वहां से आगे निकल के पांडे देश में जाते हैं, फिर वहां से किस प्रकार से ताम्रपानी नदी से होते हुए और गजेंद्र मोक्षण पंगटी पे जाके और ऐसे बहुत सारे अलग अलग यू नो क्षेत्रों के वर्णन किए हैं, और वहां से आगे बढ़ते हुए किस प्रकार से वो कन्याकुमारी पहुंचते हैं, फिर कन्याकुमारी के पास वहां पे वो भट्टाधारी के साथ उनका सामना होता है और अपने शिष्य काल कृष्णदास को वहां से उनके चंगुल से छुड़ाते हैं, और फिर वहां से वो आगे बढ़ते हुए और कन्याकुमारी के वहां पे वो ब्रह्म संहिता का जो भी पांचवा चैप्टर है, पांचवा अध्याय, वो पद्य स्वनी नदी है, वहां से वो प्राप्त करते हैं। फिर वहां से वो मत्स्य तीर्थ पे जाते हैं, और फिर वहां से आगे जाते जाते वे उडुपी पहुंचते हैं, जहां पर मध्वाचार्य की श्री गोपाल मूर्ति जो है, ये उडुपी कृष्ण उसका दर्शन करते हैं, और वहां से फिर आगे और निकलते हुए फल्गु तीर्थ, त्रिटकृपा और ऐसे होते हुए अल्टीमेटली कोल्हापुर पहुंचते हैं। फिर कोल्हापुर से वो वहां पर पंढरपुर जाते हैं, और पंढरपुर में वहां पे उनको पता चलता है कि शंकर अरण्य जो उनके बड़े भाई थे विश्वरूप, जिन्होंने संन्यास लिया था, वो पहले ही अपना प्राण छोड़ चुके हैं, और वहां से आगे चलते हुए कृष्ण वेणा नदी पे जाते हैं, और वहां पर वैष्णवों के साथ मिलके और बिल्व मंगल ठाकुर का ये श्री कृष्ण कर्णामृत जो है वो प्राप्त करते हैं। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए तापी नदी, महस्मतीपुरा और नर्मदा नदी के पास जाते हैं, वहां से आगे बढ़ते हुए दंडकारण्य जाते हैं, और वहां पर आगे जाते हुए भी फिर पंपा सरोवर जाते हैं, फिर वहां से वे पंचवटी नासिक पहुंचते हैं, नासिक में ब्रह्मगिरी में, और वहां से घूमते घूमते वापस वो गोदावरी नदी पे जाते हैं, और गोदावरी नदी से वापस चक्कर लगाते हुए वो वापस से विद्यानगर पहुंचते हैं, और फिर वहां से वो जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं। तो मतलब चैतन्य महाप्रभु का ये पूरा इतना लंबा टूर जो है वो बहुत ही विस्तृत वे में वर्णन किया है। तो इसमें जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड है श्रीरंगम में, उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब वे कावेरी नदी के पास पहुंचते हैं, श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो पहले कावेरी में स्नान करते हैं। तो ऐसे बताया जाता है कि हम लोग कोई भी तीर्थ स्थान में जाए, धाम यात्रा पे जाए, तो सबसे पहले वहां पर जाके ऑब्वियसली सबसे पहले हमें प्रणाम करना चाहिए उस धरती पे, उस मिट्टी पे, भगवान की रज पे, और उस रज को अपने माथे पे लगाकर, और जो भी वहां पर तीर्थ स्थान है जहां वहां पे जाके स्नान करना चाहिए, स्नान करके अपने आप को पवित्र करके, प्यूरिफाई करके, और फिर वहां के जो भी अधिष्ठाता मूर्ति है उसका जाके दर्शन करना चाहिए। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि भगवान है लेकिन भक्त के रूप में आए हैं, तो अपने आचार से समझाते हैं कि हमको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो वो कहते हैं अपना ये आगे बढ़ाते हुए, और श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कावेरी ते स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानिला कृतार्थ। कि कावेरी में स्नान करके वो श्री रंगनाथ भगवान जो है उनको देखने के लिए गए, उनका दर्शन करके वहां पे स्तुति प्रणति की और अपने आप को कृतार्थ माना। मैं खाली यहाँ पे 2-5 मिनट के अंदर एकदम शॉर्टकट में आपको रंगनाथ जी के बारे में भी बता देता हूं। तो रंगनाथ जी जो है, भगवान श्री रंगनाथ जो श्रीरंगम में है, ये भगवान से अभिन्न है, भगवान स्वयं है श्री रामचंद्र जी के रूप में। तो इनके इस प्रकार से बताते हैं कि ये वैकुंठ से इस धरातल पे आए थे, और यू नो इक्ष्वाकु महाराज, तो बेसिकली भगवान रंगनाथ की पूजा ब्रह्मा जी करते थे, फिर उनकी पूजा यू नो नारद जी करते थे, और इंडीड जैसे भगवान जब भगवद्गीता में कहते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विविश्वान को दिया था, उन्होंने अपने पुत्र मनु और उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था, तो सूर्यदेव उनकी पूजा करते थे, उसके बाद में मनु उनकी पूजा करते थे, फिर इक्ष्वाकु महाराज पूजा करते थे, और इक्ष्वाकु महाराज ने उनको अयोध्या में लाया था, क्योंकि इक्ष्वाकु महाराज खुद वैकुंठ में जाके और उनकी पूजा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जाना कि आगे की जो पीढ़ी होगी वो शायद वैकुंठ नहीं जा पाएगी, तो इनको इस धरातल पे लाना पड़ेगा, तो उन्होंने अयोध्या में इसको लेके आए थे, और अयोध्या में इनकी पूजा अर्चना होती थी, और इक्ष्वाकु महाराज से लेके उनके नीचे वंशज तक, दशरथ महाराज और रामचंद्र जी तक, इसकी पूजा आराधना होते आई। और जब रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली और वापिस से अयोध्या जब आए, तो उनके साथ में विभीषण भी आए थे, और विभीषण ने कहा कि भगवान मैं तो आपके साथ ही अभी रहना चाहता हूं, क्योंकि आपको छोड़ के मैं नहीं जा सकता, आपका संग विच्छेद नहीं करना चाहता मैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने वो रंगनाथ की मूर्ति विभीषण को देके कहा कि रंगनाथ जी और मुझ में कोई अंतर नहीं है, हम सेम है, और मैं चाहता हूं कि तुम जाके और लंका के अंदर तुम्हारा राज्य करो। और समय समय पर तुम फेस्टिवल करते रहना और मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। तो विभीषण जब उनको लेके जाने लगे तो रंगनाथ जी भारत से बाहर नहीं जाना चाहते थे और इस स्थान पे रंग क्षेत्र में अयोध्या से जा रहे थे। तो अयोध्या से जब लंका जाने के बीच में ये ट्रिची, ये जो चेन्नई का जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में दक्षिण भारत में, वहां पर वो फेस्टिवल का समय आया और विभीषण ने उस मूर्ति को नीचे रखा और फेस्टिवल करने के बाद जब मूर्ति को उठाने लगे तो मूर्ति उठी नहीं। तो उन्होंने विभीषण से कहा कि मैं यहीं पे रह के और तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा। तो ये बेसिकली लंका के सामने ही है। तो उन्होंने कहा कि तुम जाके वहां पर राज करो और मैं यहां पर रहूंगा। तो रंगनाथ जी की मूर्ति इतनी मनोहर है और ये अपना श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर है बेसिकली। और श्री रामानुजाचार्य यहीं पे आके और उन्होंने भक्ति का बहुत जबरदस्त प्रचार किया था और कई कई भक्त जो है, मतलब दिव्य देशम में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिव्य देशम माना जाता है। तो उस रंगनाथ जी का श्री चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन किया और उनका दर्शन करने के बाद में और बहुत ही उन्होंने प्रेम से नृत्य किया। प्रेमा वैसे कैला बहुत गान नरतन, देखी चमत्कार होइला सब लोके रमन। सो साउथ इंडिया में जनरली ब्राह्मण लोग बैठ के और ओम वगैरह पढ़ के और बहुत ही अच्छी तरह से श्लोका उच्चारण करते हैं, लेकिन ऐसा कोई नाचता गाता नहीं। तो जब चैतन्य महाप्रभु को सुनहरे अवतार के रूप में जब नाचते हुए देखा तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये कौन है, और सभी उनके प्रति आकर्षित हो गए। और फिर वहां पे वेंकट भट्ट से उनकी मुलाकात होती है। और प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय यास करे गीता आवर्तन, अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवे से, अशुद्ध पढ़े ना लोक करे उपहासे, केहो हासे केहो निंदे ताहा नहीं माने, आविष्ट होए गीता पढ़े आनंदित मने, पुलक सुश्वेद कंप यावत पढ़न, देखी प्रफुल्लित होइला महाप्रभुर मन, महाप्रभु पूछिला तुम्हें सुनो महाशय, कौन अर्थ जानी तो मा ए तो सुख होए। तो कहते हैं कि सही क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण, देवालय आसी करे गीता आवर्तन, के उस क्षेत्र में, उस रंग क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण रहता था। अभी ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण इज नॉट बाय बर्थ, यू नो वी ऑल नो, श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ब्राह्मण जो है वो गुणों से आता है और भगवान ने भी जो दिया है वो गुण और कर्म, गुण कर्म विभाग से। सो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर किसी को जन्म से ब्राह्मण माना जाए तो एक ब्राह्मणी जब अपने किसी पुत्र को जन्म देती है तो उसके साथ कई सारे कीड़े मकोड़े और वायरसेस भी पैदा होते हैं, तो उन सबको भी ब्राह्मण ही मानना चाहिए क्योंकि वो सहोदर है। सहोदर मतलब एक उदर में से निकले हुए हैं, सेम पेट से बाहर निकले, तो उनको भी ब्राह्मण मानना चाहिए। और कहते हैं कि अगर जन्म से अगर किसी को ब्राह्मण मानते हैं तो कोई ब्राह्मण अगर मर जाता है और आप उसको अग्नि देते हो तो आप एक ब्रह्म हत्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो है वो अपने कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। और एक वैष्णव जो होता है उसका दर्जा एक ब्राह्मण से भी बहुत ऊंचा होता है क्योंकि वैष्णव में ब्राह्मण इंक्लूड होता है। हमारा वो टॉपिक नहीं है तो हम उसके इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण था ये ऑर्डिनरी ब्राह्मण नहीं था, एक वैष्णव ब्राह्मण था। हाँ? और वैष्णव ब्राह्मण क्या करता था? देवालय आसी, देवालय का मतलब होता है मंदिर। तो आलय मतलब हिंदी में होता है स्थान या घर। जैसे समझो जहां पर पुस्तकें मिलती है उसको कहते हैं पुस्तकालय, जहां रोगी मिलते हैं उसको कहते हैं रुग्णालय, जहां पे छात्र रहते हैं उसको कहते हैं छात्रालय, जहां मदिरा मिलती है उसको कहते हैं मदिरालय, जहां दुख मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? दुखालय। तो ये संसार क्या है? दुखालय है। तो जहां पर देव मतलब भगवान रहते हैं उसको क्या कहते हैं? देवालय। तो देवालय मतलब जहां पर भगवान रहते हो और भगवान की पूजा अर्चना होती हो, उसकी आराधना होती हो। ऐसे नहीं कि बस हमने एक कोई मूर्ति स्थापित करके और उसको भूल गए, उसको छोड़ दिए, तो उसको हम इन वन सेंस देवालय नहीं कहेंगे। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि भगवान कहां रहते हैं? भगवान स्वयं कहते हैं नारद मुनि से कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मदभक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। के हे नारद, नारद मुनि से कहा कि भगवान लोग आपका एड्रेस पूछते हैं, क्या बताऊं मैं, आपका कोई विजिटिंग कार्ड हो तो दो मुझे। तो कहते हैं मेरा कोई विजिटिंग कार्ड नहीं है। तो कहते हैं आपका वैकुंठ में रहते ये बता दूं, तो कहा मैं वैकुंठ में नहीं रहता नारद। तो क्या योगियों के हृदय में रहते हो? तो कहा मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहां पर रहते हो भगवान? यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां भक्त लोग मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा गान करते हैं, मेरे गुणों का वर्णन करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, वहां पर मैं रहता हूँ। तो एक आपको घटना बताता हूँ, शायद आपने सुनी होगी, या साउथ इंडिया की बहुत फेमस घटना है कि एक बार एक जो अलवर होते हैं वो जंगल में से गुजरते रहते हैं और बहुत भयंकर एकदम बारिश होती है और इस प्रकार से इतनी घमासान वर्षा होती है, बिजली चमकती है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे एक थोड़ा सा कोई अपने शरण दे दो। तो देखते हैं कि एक छोटी सी कुटिया उनको वहां नजर आती है, भगवान का धन्यवाद करते हुए उस कुटिया में प्रवेश करते हैं और कहते हैं भगवान आप कितने दयालु हो, इस प्रकार के घने जंगल के बीचों बीच में आपने किसी कुटिया का प्रबंध कर दिया मेरे लिए। और वो बहुत छोटी सी कुटिया होती है, सिर्फ एक व्यक्ति उसके अंदर सो सके उतनी एक कुटिया होती है, भगवान को धन्यवाद दे के वो वहां पे सो जाते हैं। तो जैसे ही लेटते हैं थोड़ी देर के बाद वहां पर दूसरी आवाज आती है और दरवाजा खोलते तो देखते हैं कि दूसरा एक योगी होता है और वह भी शेल्टर ढूंढता रहता है और वो कहता है कि ठीक है आप अंदर आ जाओ, दूसरा भक्त आ गया भगवान का। तो वो सोचते हैं कि एक जगह जितने में एक व्यक्ति सो सकता है उस जगह में दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, जितने स्थान में एक व्यक्ति सो सकता है दो व्यक्ति वहां बैठ सकते हैं। तो वो दोनों बैठ जाते हैं और बैठने के बाद क्या करते हैं, ऐसे बताते हैं कि जब दो भक्त लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, तो कोई कह रहा था कि हरि कथा करते हैं, तो एक ब्रह्मचारी कह रहे थे कि नहीं, जब दो सीरियस डिवोटीज मिलते हैं तो वे हरि कथा करते हैं, नहीं तो कई बार दो कैजुअल डिवोटी मिलते हैं तो वे शायद प्रजल भी कर ले, प्रजल भी कर ले, इसलिए कैजुअल डिवोटी इज ए कैजुअलिटी टू द सोसाइटी। तो वे फिर एनीवे बात करते हैं, तब तक तीसरा नॉक होता है और तीसरा एक वहां पे भक्त आता है, वह भी शेल्टर ढूंढता रहता है इस बारिश के अंदर। तो वे सोचते हैं कि जितनी जगह में एक व्यक्ति सो सकता है दो व्यक्ति बैठ सकते हैं, जितनी जगह में दो व्यक्ति बैठ सकते हैं तीन व्यक्ति खड़े रह सकते हैं। तो तीनों खड़े हो जाते हैं और खड़े खड़े क्या करते हैं, एक से भले दो, दो से भले तीन, और वो तीनों जन भगवान के बारे में मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, भगवान के बारे में वो लोग चर्चा करते हैं। और जैसे ही भगवान के बारे में चर्चा करते हैं क्या होता है, लो एंड बिहोल्ड भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं। तो सुबह होते होते उन लोगों को लगता है कि इस कमरे में कोई चौथा व्यक्ति भी है और बहुत टाइट हो रहा है, और वो चौथा व्यक्ति कौन होता है, भगवान होता है। तो वे छोटी सी झोपड़ी उस बीचों बीच जंगल के अंदर एक मंदिर में परिवर्तित हो जाती है, देवालय बन जाता है। तो इसीलिए देवालय वो स्थान है जहां पर भगवत चर्चा हो, देवालय वह स्थान है जहां पर भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हो, देवालय वह स्थान है जहां पर भक्त लोग साथ में आके और कोऑपरेशन के साथ में भगवान के भक्ति को बढ़ाने के लिए और भगवान के आंदोलन को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करें। तो उसी हिसाब से हम लोग कहीं पे भी हो, अगर हमारा ध्येय ये है तो हम भी देवालय में है। तो देवालय आके गीता आवर्तन, तो क्या करता था, देवालय आशी करे गीता आवर्तन, तो देवालय आके और वहां पे गीता पढ़नी चाहिए। उसके लिए वहां पर बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम लोग अगर मंदिर में जाते हैं और खाली घूम घाम के दर्शन करने आ जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन दे रहे थे और बीच प्रवचन के अंदर लगभग अंत होने आया तभी उनके कुछ शिष्य वहां पर आए और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा कि आप लोग कहाँ थे, और उन्होंने कहा कि हम स्थानीय मंदिरों के दर्शन करने के लिए गए थे शिला प्रभुपाद। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बड़े ही कठोर शब्द में ये बात कही और उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवतम पर अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दिया हुआ प्रवचन को छोड़ के स्थानीय मंदिरों में जाना समय की बर्बादी करना है। मैं फिर से दोहराता हूं, आप कान खोल दीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सके। तो कहते हैं कि आप भगवान को समझोगे भी नहीं यदि आप उनके बारे में सुनोगे नहीं। तो भगवान को अपने चर्म चक्षु से देखने के बदले अपने कर्ण रंध्रों के द्वारा समझने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम भगवान के बारे में समझ सकेंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि हम पहले भगवान को समझे। सो ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पावर एंड द पोजिशन ऑफ लॉर्ड बिफोर वी ट्राई टू जम्प ऑन द पास्ट टाइम्स। तो गीता आवर्तन फिर आगे क्या करता था, गीता आवर्तन अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवे से अशुद्ध पढ़े ना लोक करे उपहासे। अष्टादश का मतलब होता है 18, रोज वो गीता के 18 अध्याय पढ़ता था। अभी हम तो कोई गीता का 18 अध्याय रोज पढ़ते नहीं है, पढ़ नहीं पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो रोज नियम से गीता पढ़ते हैं और कम से कम एक श्लोक, दो श्लोक, तीन श्लोक जो भी हो सके वो हमको नित्यम भागवत सेविया की तरह उसका पालन करना चाहिए। लेकिन ये जो ब्राह्मण था ये 18 अध्याय पढ़े आनंद आवे से, और बिल्कुल आनंद में आके और वो पढ़ता था। और ये आनंद आवे से वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि कई बार हम जब पढ़ते हैं तो इतना आनंद हमको आता नहीं है। कई बार हमको लगता है ये ड्राई फिलोसफी है या क्या है, और अशुद्ध पढ़े ना, वो क्या कर रहा था, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था तो अशुद्ध पढ़ रहा था। अशुद्ध पढ़े ना लोक करे उपहासे, और अगर कोई व्यक्ति सही काम नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है, अशुद्ध पढ़ रहा है तो दूसरा उसके मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। तो ये उपहास जो है ये इस दुनिया के अंदर बाय डिफॉल्ट में मिलता है हमारे को, इसके लिए हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कदम कदम पे हमारे को उपहास का सामना करना पड़ता है। ऐसा हमारे जीवन में कभी नहीं हुआ है कि किसी ने हमारा उपहास या हमारा मजाक नहीं उड़ाया हो, है क्या नहीं? कई बार हमको इसका सामना करना पड़ता है, और चाहे हम गलत काम करें तब तो लोग हमारा उपहास करेंगे करेंगे, पर कई बार सही काम करने पे भी हमको उपहास का सामना करना पड़ता है कि नहीं? कितने सारे हम में से लोग अपने आप में ये चीज देख सकते हैं कि जब हम लोग भक्त बनने के लिए आए, इस्कॉन के अंदर आए, इस्कॉन ज्वाइन किए, तो कई लोगों ने हमारा उपहास किया, कई लोगों ने किया। कई बार हमारे भाई बंधु, कई बार हमारे माता पिता, कई बार हमारे मित्र वगैरह, और कहे कि अरे कहाँ तुम कहाँ तुम फंस गए, ये चर्सी लोगों के बीच में कहाँ पे जाके तुम फंस गए, और दम मारो दम, कितना सारा उल्टा सीधा बोल बाल के। और कई बार लोग हमारा उपहास करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम ही बहुत बड़े मतलब भक्त बन गए, क्या ये है वो है करके, तुम कांदा लहसुन नहीं खाते, तुमने ये छोड़ दिया, तुमने पूरा पारिवारिक जीवन छोड़ दिया, तुम किसी से संबंध नहीं रखते हो। कई बार ऐसे इस प्रकार के उल्टे सीधे बात करते हैं, और यदि आप अच्छा व्यवहार करने की भी कोशिश करो तो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कोई ना कोई कारण से लोग आपसे जलने लग जाते हैं। यदि आप अच्छा बनो तो उस जलन के वशीभूत होते हुए भी वो किसी न किसी प्रकार से आपका उपहास करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा ये उपहास जो है वो बिना कहे मिल जाता है, हमको ढूंढने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार यश लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन अपयश खैरात में मिल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही मिल जाता है, लोग देने के लिए रेडी रहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दुनिया के अंदर इस प्रकार के लोग हमको हमेशा ही मिलेंगे जो किसी न किसी प्रकार से हमारा मजाक उड़ाएगा। अशुद्ध पड़े ना लोक करे उपहासे, और बेसिकली हमको कोई भी चीज पढ़ते हुए आनंद की अनुभूति होनी चाहिए, चाहे भले हमारा कोई उपहास करे। ये कहना बहुत आसान है लेकिन है बहुत मुश्किल। जैसे आप अगर कोई अच्छा कार्य करो ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कई हमारे वेस्टर्न कंट्रीज के भक्त जो है डिवोटी वो भक्त बन गए। तो एक बार प्रभुपाद जी जयपुर में थे और उन्होंने अपने एक डिसाइपल से कहा, कौशल्या शायद उसका नाम था, और कहा कौशल्या तुम ईशोपनिषद गा के सुनाओ। तो वो बिचारी गाने लगी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णातम पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णातम एव अवशिष्यते। तो वो जब कहने लगी, एक श्लोक बोला, दो श्लोक ईशावास्यमिदं सर्वम, दो तीन चार छह श्लोक बोला, प्रभुपाद ने कहा स्टॉप, वेरी गुड, वंडरफुल। तो वहां पे जयपुर में कुछ इंडियन लोग थे, वो इनको देख रहे थे, तो कई लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन एक व्यक्ति आके प्रभुपाद को कहने लगा कि प्रभुपाद जी ये आपके जो शिष्य है इनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है, ये जो संस्कृत प्रोनाउंस कर रहे हैं ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है। जैसे कई बार लोग हमारे को आके बोलते हैं, ये आप क्या हरे रामो 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 हरे हरे, ये रामो किधर से आ गया, बरोबर बोलना चाहिए, कृष्ण बोलो, ये कृष्णा कृष्णा क्या करते हो तुम लोग, कृष्ण बोलो, राम बोलो, ये बोलो। तो इस प्रकार से आके प्रभुपाद को कहने लगे कि इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। और प्रभुपाद तो जीनियस है, तो प्रभुपाद ने कहा कि वेदर देयर प्रोनाउंसिएशन इज परफेक्ट और नॉट, नो प्रॉब्लम, बट देयर रिनंसिएशन इज परफेक्ट, उनका त्याग जो है वो परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने केवल ये बात सुन के मेरे मुंह से कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए, इन लोगों ने कर दिया, लेकिन तुम कभी ऐसा नहीं करोगे, उल्टे का आप मुझे आके सुना रहे हो। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने गीता भागवत का प्रचार करने का भरसक प्रयास किया भारत के अंदर, लेकिन कोई मेरी बात नहीं माना, उल्टे सभी आके मुझे गीता भागवत पढ़ाने लगे, तब मुझे गुरु की आज्ञा से अमेरिका आना पड़ा और अमेरिका में आके प्रचार करना पड़ा। तो बोला कि आप खाली बड़ी बड़ी बात करोगे और आप अपने यू नो बस खाली अपने बेटी बेटे की शादी के अंदर यू नो जाके पैसे खर्च करोगे लेकिन मेरी सहायता नहीं करोगे। किसी ने प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद जी आप ये जो बैक टू गॉडहेड मैगजीन चला रहे हो इसको हिंदी में प्रारंभ कीजिए। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है आप प्रारंभ कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, आप सिर्फ बातें करते हैं लेकिन सहायता तो नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से कई लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो उपहास करने के लिए आ जाते हैं और हमको उस उपहास का सामना करना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, लोग कितना भी कुछ कहे, हम लोग अगर अगर अच्छी तरह से इस चीज का ध्यान रखते हुए कि किस प्रकार से मैं ये भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं और अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूं, तो बिना कुछ किसी यू नो उस चीज के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और फिर भगवान की कृपा हमारे को प्राप्त होगी। हाँ, क्योंकि हर कदम कदम पर हमको किसी न किसी उपहास का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे वो नो लोग गाना भी कहते ना कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, तो लोग जहर पिलाते रहेंगे और हमको उस जहर को पीने का प्रयास करना पड़ेगा और किसी न किसी प्रकार से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि उस दुनिया में कई जो लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं वो हमारी निंदा करेंगे। हाँ, और कई बार लोगों की तो बात छोड़ो, हमारा अपना मन हमारी निंदा करेगा, हमारा मन हमारा उपहास करेगा। और कई बार हमारा मन हमको कहेगा कि नहीं नहीं बेटा, बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप तक मत चला जा, हाँ थोड़ी भक्ति कर, ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। और कई बार हमारा मन जो है वो जप करने में नहीं लगेगा, गीता पढ़ने में नहीं लगेगा, भक्तों का संग करने में नहीं लगेगा, और कई बार कई अलग अलग प्रकार से हमारा मन जो है वो भी हमारा उपहास करेगा और बोलेगा कि नहीं। लेकिन उस उपहास का भी हमको सामना करना पड़ेगा, मन का और दूसरे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या कोई भी हो, हर किसी का सामना करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोक करे उपहासे, केहो हंसे केहो निंदे तहां नहीं माने, आविष्ट होए गीता पढ़े आनंदित मने। लेकिन कोई उसकी निंदा करता था, कोई उस पर हंसता था, कोई उसका उपहास करता था, ये ब्राह्मण ध्यान नहीं देता था। हमारा प्रॉब्लम कब होता है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि कोई हमारा उपहास कर रहा है, लेकिन उस उपहास से हम जब विचलित हो जाते हैं तब प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो वो कहता था कि तेहो नहीं माने, वो कुछ सोचता नहीं था, आविष्ट होए गीता पढ़े आनंदित मने। और वो क्या करता था, आविष्ट होके और गीता पढ़ता था आनंदित मन से। सो दिस इज द रीजन दैट वी चोज टू कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज द रीजन दैट वी प्लान टू ज्वाइन इस्कॉन, कि आविष्ट होए गीता पढ़े आनंदित मने, ये हमारा उद्देश्य है, था और रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग कई बार दूसरी चीजों में लग जाते हैं। आविष्ट होए निंदा करे आनंदित मने, हम लोग निंदा करने लग जाते हैं एक दूसरे की, हाँ, या दूसरों की निंदा करने लग जाते हैं। आविष्ट होए प्रजल्प करे आनंदित मने, हम लोग प्रजल्प करने लग जाते हैं, आनंदित मन से आविष्ट हो जाते हैं प्रजल्प करते करते उस चीज के अंदर, तो उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं कि वो ब्राह्मण, वो वैष्णव, वो क्या कर रहा था, आविष्ट हो गया था, वो पूरा गीता पढ़ने के अंदर इतना फोकस्ड था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बाहर क्या हो रहा है, कितनी गालियां मुझे पड़ रही है, कौन मेरी मजाक उड़ा रहा है, कौन क्या कर रहा है। आविष्ट हो गीता पढ़े आनंदित मने, और एकदम बिल्कुल अपने आनंद से, आनंद के मन से और आविष्ट होके और वो गीता पढ़ रहा था। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये जो आविष्टपन है, हाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये एब्जॉर्प्शन जब हमको आएगा तो हम लोग, हमारा ये जो क्रिटिसिज्म है और ये जो है मेंटल अग्नि जो है, ये सबको हम लोग यू नो दूर भगा सकते हैं और दूर कर सकते हैं। लेकिन कब होगा ये, हाँ, जब हम आविष्ट हो जाएंगे, और आविष्ट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार एक व्यक्ति, एक साधु या एक योगी, वो योगी जो था वो अपने एकदम ध्यान लगाकर बैठा था और अचानक किसी ने आके उसको बहुत जोर से धक्का मारा और उसका ध्यान टूट गया। तो उसने देखा कि एक एक औरत है, एक यू नो युवती है जो बहुत जोर से भाग रही है अपने प्रेमी को मिलने के लिए, और उसने देखा नहीं कि ये व्यक्ति यहाँ पर यू नो तपस्या लगाकर बैठा था। उसने उसको लात मार दिया गलती से और आगे चली गई। तो योगी को बहुत गुस्सा आया, कहता कि आने दो उसको वापस से, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। तो वो जब अपने प्रेमी से मिलके वापस जाने लगी तो योगी बहुत जोर से उसके ऊपर भड़का और बोला कि मूर्ख, तुझे समझ में नहीं आता है, मैं यहाँ पर भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था और भगवान के ऊपर समाधि लगाकर तपस्या करने का प्रयास कर रहा था, तूने मेरी तपस्या भंग कर दी, तूने मेरा एब्जॉर्प्शन को तोड़ दिया, और तुम ऐसा पागल के जैसे भागने लगी। तो उसने कहा कि हे साधु महात्मा, मुझे क्षमा करना, पर मुझे पता ही नहीं चला कि शायद मैंने आपको टक्कर मार दी, तो यदि अगर ऐसा हुआ है तो आप मुझे क्षमा करना। तो इस प्रकार से उसने कहा। लेकिन उस युवती ने एक और पाठ पढ़ाया उस साधु को और उसको कहा कि हे साधु महात्मा, मैं तो अपने प्रेमी से मिलने के लिए इतनी आविष्ट थी, इतनी एब्जॉर्ब थी कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने आपको टक्कर मार ली, लेकिन आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए, आप अपने भगवान से मिलने के लिए कितने आविष्ट थे ये आप खुद ही सोच लो। हाँ, कि आपको मेरी टक्कर दिखाई दे गई, तो इससे समझ में आता है कि आप ज्यादा आविष्ट थे कि मैं ज्यादा आविष्ट था। तो जब हम लोग बहुत ही अंदर एकदम आविष्ट रहेंगे तब हम पे जो दूसरे सर्कमस्टांसेस है उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक हम अंदर से आविष्ट नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए लाइफ इज टू शॉर्ट टू टेक इट सीरियसली। किसी भी चीज को बहुत सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। कि हम लोगों ने ये जो मूवमेंट ज्वाइन किया था ये निंदा करने के लिए नहीं किया था, प्रजल्प करने के लिए नहीं किया था, ये आविष्ट होने के लिए किया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम लाइक माइंडेड लोगों के साथ में नहीं होते हैं, भक्तों के साथ में नहीं होते हैं, तो इस माया के वशीभूत हो जाते हैं। और ये माया कोई छोटी मोटी माया नहीं है। भगवान कहते हैं कि देवी हर्ष गुणमयी मम माया दुरुत्तया। अर्जुन भी भगवान से पूछते कि भगवान मैं पाप नहीं करना चाहता लेकिन कैसे मैं पापों में प्रयुक्त हो जाता हूं। तो भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। क्योंकि हमारे में रजोगुण है, काम है, क्रोध है, मोह लोभ मद मत्सर सारे के सारे अवगुण भरे हुए, और जब तक इस अवगुण से हम लोग दूर नहीं होते हैं तो किसी न किसी प्रकार से माया हमारे किले के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते रहेगी, हमारे किले के ऊपर धावा बोलती रहेगी और हमको नीचे गिराती रहेगी। इसके लिए आविष्ट होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग आविष्ट नहीं होते हैं तो देन छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम लोग विचलित हो जाया करेंगे। हाँ, और इसके लिए देखो, जैसे जो व्यक्ति आविष्ट होता है, जैसे समझो कोई व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है, हाँ, और उस क्रिकेट के अंदर अगर वो आविष्ट हो गया है तो उसको खाने पीने का भी सूद नहीं होता है कि कई घंटों तक क्रिकेट खेलते रहता है। या कोई व्यक्ति जब मूवी देखता है तो एक के बाद एक, दो के बाद चार, ऐसी लाइन से कितनी सारी मूवी या यूट्यूब चैनल्स देख लेता है। या फिर अगर कोई चेस खेल रहा है तो उसके अंदर इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि खाना पीना तक भूल जाता है। तो अगर कोई भौतिक वस्तु के लिए अगर एब्जॉर्ब हो सकता है तो क्या आध्यात्मिक वस्तु के लिए नहीं हो सकता है? लेकिन उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। तो जब हम प्रयास करेंगे, जब हम एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो क्या होगा? पुलक अश्रु श्वेद कंप यावत पठन देखी आनंदित होइला महाप्रभुर मन। तो जब ये आविष्ट होके ये जब पढ़ने लगा तो क्या हुआ कि वो उसके उसके शरीर में पुलक, उसका शरीर पुलकित हो गया, अश्रु उसके आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, कंप उसका शरीर में कंपन होने लगा, श्वेत पसीना निकलने लगा, यावट पठन। तो जैसे ही वो गीता पढ़ता था तो क्या होता था, गीता पढ़ने मात्र से ही उसके अश्रुधारा बहने लगती थी, उसका शरीर पुलकित हो जाता था, उसको पसीना निकलता था, कंपन होता था। और इस प्रकार से जब उसके साथ में होने लगा, ये अष्ट विकार जब उसके शरीर में आने लगा, तो महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको पहचान लिया। तो कई बार ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति किसी माइक चालू है सो किसी व्यक्ति के अंदर अगर भगवत प्रेम होता है तो वह सहसा जो है वो बाहर आ जाता है। हमको ना उसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और कई बार ऐसा है कि कई लोग अगर जबरदस्ती रोने धोने की कोशिश करते हैं तो उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। एक बार हरिदास ठाकुर वो कहीं रास्ते में जा रहा था, उसने सपेरे को देखा कि वो सपेरा जो था वो सांप के सामने बिन जब चला रहा था तो सांप इस प्रकार से हिल रहा था, और उस सांप का खाली दर्शन करके हरिदास ठाकुर को भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का मर्दन किया था और कालिया के ऊपर डांस किया था, और बिल्कुल वो भावा विभोर होके और वहां पे एकदम मूर्छित हो गए। तो एक और व्यक्ति को लगा कि अरे ये तो हरिदास ठाकुर अगर ऐसा कर रहा है तो मैं भी करता हूं। क्यों? क्योंकि हरिदास ठाकुर जब मूर्छित हो गए तो उनके शरीर से जो प्रेम के ये जो लक्षण दिखाई दे रहे थे, सभी लोग आके उनकी पूजा आराधना करने लगे। और इस व्यक्ति ने जब करने की कोशिश की झूठ मूठ, तो सारे व्यक्ति को समझ में आ गया और उस सपेरे ने चप्पल उठा उठा के उसको मारा। हाँ, बोला कि इस प्रकार से तू क्या कर रहा है। तो जो ये जो लक्षण है ये अपने आप स्वतः प्रकट हो जाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु जैसे महान भक्त और जो भगवान है इनको देख सकते हैं। तो देखी प्रफुल्लित होइला महाप्रभुर मन, महाप्रभु का मन आनंदित हो गया। और ऐसा जब हुआ तो महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु उसके पास में गए और उसको कहा कि अरे आप इतना अच्छी तरह से भगवान गीता पढ़ रहे हो तो आप मेरे को बताओ आपको किस चीज से पढ़ के और गीता का क्या चीज समझ में आ रहा है कि आपका शरीर इतना पुलकित हो रहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसके पास में गए और कहने लगे कि महाप्रभु पूछिला तारे सुनो महाशय कौन अर्थ जानी तोमार ए तो सुख होए। बोला माय डियर सर व्हाई आर यू इन सच एक्सटेटिक लव, विच पोर्शन ऑफ भगवद गीता गिव्स यू सच ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। वो पूछने लगे कि क्या पढ़ के गीता में तुमको इतना आनंद की अनुभूति हो रही है। तो इस आनंद की अनुभूति होनी बहुत जरूरी है, जब लोग देखेंगे कि हम भक्तों को आनंद की अनुभूति हो रही है तो दूसरे लोग उससे आकर्षित होंगे। नहीं तो अगर हम लोग ही मुंह लटका के बैठे रहेंगे और जाके किसी को कहेंगे प्रभुपाद ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, कहेंगे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जाओ प्रचार करो, तो हम लोग प्रचार करने वाले। आज सुबह भी किसी ने महाराज को प्रश्न पूछा था कि महाराज भक्ति वृक्षा की शुरुआत कैसे की जाए, या इस प्रकार से कई लोग कई प्रश्न पूछे जा रहे थे। और हम अगर आनंदित नहीं होंगे तो दूसरों को क्या आनंद देंगे। यू नो इफ यू स्क्वीज अ लेमन, लेमन जूस विल कम आउट, इफ यू स्क्वीज ऑरेंज, ऑरेंज जूस विल कम आउट, इफ यू स्क्वीज मैंगो, मैंगो जूस विल कम आउट। तो हरे कृष्णा क्या हो गया प्रभु जी, हाँ ओके नो प्रॉब्लम। सो अगर हमारे अंदर खुशी नहीं है और हम जाके दूसरों को बोल देंगे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, तो सामने वाला बोलेगा वो सब तो ठीक है प्रभु जी, लेकिन तुम मुंह लटका के तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। तो जब लोग देखेंगे कि हम लोग ब्लिस में है, आनंद में है, तब लोग आना चाहेंगे, क्योंकि लोग आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो उस प्रकार से इस ब्राह्मण के भी मन में इतना आनंद हो रहा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्यान उसने आकर्षित किया। और चैतन्य महाप्रभु ने आके उससे पूछा कि बताओ मुझे क्या पढ़ रहे हो तुम। तो बड़ी ही विनम्रता से, बड़ी ही नम्रता से उस वैष्णव ब्राह्मण ने कहा कि विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी शुद्ध शुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। तो उन्होंने कहा कि विप्र कहे, वो कहने लगा ब्राह्मण के हे भगवान मूर्ख आमी, मैं तो बड़ा मूर्ख हूं, शब्दार्थ न जानी, मुझे तो कोई शब्द का अर्थ भी पता नहीं है, शुद्ध अशुद्ध पढ़ रहा हूं मैं, क्यों, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, केवल गुरु ने मुझे कहा है गीता पढ़ने के लिए और गुरु की आज्ञा मान के बस मैं कर रहा हूं, बाकी तो मुझे कुछ आता जाता है नहीं, क्योंकि मैं इलिटरेट हूं, मैं अशिक्षित हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, केवल मेरे गुरु ने कहा है इसके लिए मैं गुरु की आज्ञा मान के ये काम कर रहा हूं। तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्से कथिता ही अर्थ प्रकाशान्ते महात्मना। केवल भगवान और गुरु के अंदर यदि किसी ने अपना अपना फेथ रख लिया है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये एक्सटेसी, ये आवेश, ये आनंद जो है इसकी अनुभूति हो जाएगी यदि गुरु अगर आशीर्वाद दे दे। इसीलिए हम लोग गुरुवाष्टकम में रोज गाते हैं यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपी, कि गुरु की आज्ञा से जो है वो सब कुछ सफल हो जाता है, और अगर गुरु प्रसन्न नहीं है तो कुछ भी काम नहीं होगा। यू नो जैसे देखो कर्ण का, कर्ण उसके पास में इतना सारा नॉलेज था और स्किल था, दोनों था, लेकिन गुरु को उसने प्रसन्न नहीं किया था तो सारा का सारा ज्ञान और सारा का सारा इल्म उसके कोई काम नहीं आया, वो वहीं का वहीं धरा का धरा रह गया। लेकिन जो गुरु को प्रसन्न कर देता है वो तर जाता है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि बस मैंने केवल मेरे गुरु की आज्ञा का पालन किया और आज पूरे दुनिया भर के अंदर हरे कृष्णा का प्रचार कर दिया। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु की आज्ञा मान के और वो पढ़ रहा था, बस केवल गुरु ने कहा है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ठीक है गुरु की आज्ञा मान के तुम पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन तुम्हारे शरीर में इतना ये कंपन, ये अश्रु, ये पुलकित, ये सब क्यों हो रहा है, किस कारणवश हो रहा है कि वो जरा मुझे बताओ। तो वो कहने लगा कि हे महाप्रभु, मैं ये जब गीता खोलता हूं, गीता देखता हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं कि अर्जुनेर रथ कृष्ण होए रज्जुधर वो शिया छे हत्र यत्र श्यामल सुंदर। तो उसने कहा कि मैं देखता हूं कि अर्जुन के रथ पे भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने वरद हस्त में, उन्होंने अपने कमल हस्त में कर कमल के अंदर क्या क्या पकड़ के रखा है, लगाम पकड़ के रखी है, घोड़ों के लगाम पकड़ के रखी है, और अर्जुन से नीचे सारथी की जगह पे भगवान बैठे हुए घोड़ों के लगाम को पहन के, और अर्जुन उनको आदेश दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। और वो आदेश भी कैसे दे रहा है, हम सब जानते हैं कि इतना घमासान वहां पर वो तुमुल घोष होता था कि मुंह से आवाज सुनाई नहीं देती थी। तो अगर राइट में जाना है तो अर्जुन भगवान को राइट में लात मारता था, अगर लेफ्ट लेना है तो भगवान को लेफ्ट में लात मारता था, सीधा जाना है तो पीछे लात मारता था ताकि भगवान को समझ में आ सके कि कहां कहां रथ किस किस दिशा में लेके जाना है। क्योंकि रथ तो रथी के हिसाब से चलता था, सारथी के हिसाब से नहीं। सारथी तो जस्ट खाली ऑर्डर मानता है, ड्राइवर को जो मालिक ने ऑर्डर दे दिया राइट लो तो राइट लेगा, लेफ्ट लो तो लेफ्ट लेगा। तो इस प्रकार से वो कहने लगा कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वह सभी कारणों के कारण जन्मादयस्य यतान्वित अतिरतश्चार्थेषु विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कविय मुह्यन्ति यत सूरय। हाँ, वह अविज्ञ स्वराट, वह भगवान श्री कृष्ण जो जन्मादयस्य यत, जिनसे सभी का उद्गम स्थान होता है, जो आदि है, अनंत है, जिनका रूप है, और वह भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, जो लक्ष्मी के पति है, जो वैकुंठ पति है, वो क्या कर रहे हैं, वो अर्जुन का सारथी बन के ड्राइवर के रूप में अर्जुन के घोड़ों की रस्सी को अपने हाथ में लेके और उस रथ को चला रहे हैं और अर्जुन की आज्ञा मान रहे हैं। और ये देख के और मुझे बहुत ही आविष्ट और बहुत आनंद आ रहा है और एकदम इस प्रकार से मैं आवुभित हो रहा हूं कि ये भगवान कर क्या रहे हैं। और अर्जुन कहिते छे ही तो उपदेश तारे देखी मोर होय आनंद आवेश। और वो अर्जुन जो कंफ्यूज हो चुका है, उस का कंफ्यूजन दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसको उपदेश दे रहे हैं, और ये देख के मेरा मन जो है बड़ा विचलित हो रहा है, और इसके लिए मेरे शरीर के अंदर इस प्रकार से अष्ट विकार का भाव उत्पन्न हो रहा है, मेरा शरीर में कंपन हो रहा है, मुझे अश्रुधारा निकल रही है कि वे भगवान श्री कृष्ण जिसकी सेवा करने के लिए हजारों हजारों लक्ष्मियां लाइन में खड़ी रहती है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृते सुसुर भीर भीपालयंतम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोले कि वो लक्ष्मी सारी लाइन में लगी रहती है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, जहां 16,108 रानियां भगवान के आगे पीछे घूमती है केवल ये देखने के लिए कि भगवान को किसी चीज की कमी तो नहीं है। हाँ, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अचेद अभेद सब वेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे पछि पाहु तरी पुनि पार न पावे, और ताहे अहीर की छोरिया छछिया वर छाच पे नाच नचावे। हाँ, रसखान जी कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। हाँ, जिसकी आराधना करने के लिए शेष नाग शिवजी इंद्र चंद्र सुरेश अग्नि वायु सारे के सारे देवता लाइन में खड़े हैं, गणेश जी सभी लोग क्या करे निरंतर गावे, और वो इतने अनादि है अनंत है कि इसको कोई पार नहीं पा सकता है। नारद मुनि से लेके व्यासदेव से लगाकर सुखदेव गोस्वामी तक सभी लोग जिसका गुणगान करते हुए थकते नहीं है, उस भगवान श्री कृष्ण को ये गोकुल की अहीर की छोरिया थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचा लेती है, सोचो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर वो कह रहा है कि देखो भगवान जो है इतने बड़े संपूर्ण स्वराट है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अर्जुन के सारथी बन के बैठे हुए हैं, और ये देख के मेरे मन में बड़ा ही आवेश हो रहा है, और इसके लिए मुझे बहुत ही इस प्रकार से मैं विचलित हो रहा हूं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं बात सुन के और कहते हैं, प्रभु कहे गीता पढ़े तुम्हारा ये अधिकार, तुम इसे जानी हो ऐ गीता अर्थ सार। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे विप्र, गीता पढ़ने का अधिकार तो केवल तुम्हारे को ही है, तुमने ही गीता का असली मर्म समझा है, नहीं तो लोग केवल बस गीता पढ़ते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन तुमने बिना पढ़े गीता को समझ लिया है क्योंकि तुमको गीता का सार समझ में आ गया है। वह भगवान श्री कृष्ण को गीता के हर पेज पे और गीता के हर श्लोक पे देखता था। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर क्या करते हैं, उसको एक उपहार देते हैं। ए तो बोली सही विप्र कैला आलिंगन, प्रभुपद धरि विप्र करे ना रोदन। तो इतना बोल के श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस विप्र का आलिंगन किया, उसको अपने गले लगाया और वो विप्र श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया और गिर के और रोने लगा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने को वो कहने लगा कि तोमा देखी तहा होते द्विगुण सुख होए सेई कृष्ण तुमी है ना मोरा मन लय। तो कहते हैं कि हे महाप्रभु, पता नहीं आपको देख के क्यों मेरे मन में बार बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। हा? आपको देख के मेरे मन में डबल आनंद हो रहा है। हा? जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भगवान कृष्ण को मैं इस गीता पे देखने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहा हूं, जिसके बारे में समझने का प्रयास कर रहा हूं, जिसकी भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं, वो कहीं आप तो नहीं हो? क्यों मेरे मन में ऐसा भाव उठ रहा है? और इस प्रकार से वो कहता है, और वे कहते हैं कि कृष्ण स्फुरते तार मन हाई छे निर्मल अतएव प्रभुर तत्व जानीला सकल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण स्फुरते तारे मन, उसके मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हो गए, कृष्ण स्फुरित हो गए और उससे उसका मन निर्मल हो गया। और इस प्रकार से जब उसका मन निर्मल हुआ तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का असली तत्व जो है वो समझ सका। अतएव प्रभुर तत्व जानीला सकल तभे महाप्रभु तारे करीला शिक्षण एही बात कहा न हो करी हो प्रकाशन। और इतना फिर बोल के श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उसको गीता पढ़ाई, उसको गीता सिखाई। कहा कि तू तू पढ़ा लिखा नहीं है कोई बात नहीं, तू अशिक्षित है कोई बात नहीं, मैं स्वयं तेरे को गीता पढ़ाऊंगा। तो कौन किसको गीता पढ़ा रहा है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण है वो इस विप्र को गीता पढ़ा रहे हैं, जैसे कि भगवान ने अर्जुन को पढ़ाया था। हाँ, केवल अर्जुन इतना सौभाग्यशाली था जिसने स्वयं डायरेक्टली गीता जो है भगवान से सुनी थी, और उसी प्रकार से भगवान ने ये गीता इस दूसरे अर्जुन को सुनाई, आज का अर्जुन। हाँ, इसको गीता सुनाई भगवान ने। तो सोचो कितना अहोभाग्यम अहोभाग्यम। हाँ, उसका इतना बड़ा भाग्य था कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, कि जो भगवान से अलग है, अभिन्न है, भगवान से भिन्न नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, उन्होंने सुनाई। से ही विप्र महाप्रभुर बड़ा भक्त होइला। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना कंक्लूजन देते हैं और कहते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उस विप्र को खुद गीता पढ़ाई तो क्या हुआ इससे? से ही विप्र महाप्रभुर बड़ा भक्त होइला चारी मास प्रभु संग कबूना छाड़ीला। और चार महीने तक उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को नहीं छोड़ा और रोज चैतन्य महाप्रभु के शरण में बैठ के और वो गीता पढ़ने लगा। तो ये स्टोरी बहुत ही यू नो उत्कृष्ट वे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसमें लिखते हैं। इसमें से हम लोग कई चीजें हैं जो समझ सकते हैं और कई इसमें से लेसन हम लोग लर्न कर सकते हैं, कई शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। तो अभी मैं बस केवल 5-10 मिनट में एज ए कंक्लूजन, एक सारांश समरी के रूप में इस चैप्टर को समराइज करते हुए बताऊंगा कि कैसे पहला लेसन जो हम लोग इससे लर्न कर सकते हैं वो है कि ब्राह्मण जो है वो जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है, और वैष्णव जो है वो ब्राह्मण से भी बड़ा होता है, ये शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, मंदिर क्या होता है? मंदिर इज नॉट जस्ट ए स्ट्रक्चर, इट इज ए प्लेस वेयर लॉर्ड इज वर्शिप्ड, भागवतम इज बींग स्पोकन, हरिनाम इज बींग चैंटेड एंड डिवोटीज आर एसोसिएटेड विथ। तो ये जो है, ये जो स्थान है, ये मंदिर है। और जैसे ही हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आएंगे, एज सून एज वी विल कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, वॉट विल हैपन? बाय डिफॉल्ट जैसे हम कंप्यूटर शुरू करते हैं तो कंप्यूटर शुरू करने के साथ साथ में कई हमारे प्रोग्राम्स शुरू हो जाते हैं, उसी प्रकार से बाय डिफॉल्ट वी विल हैव क्रिटिसिज्म, उपहास हमको खैरात में मिलेगा, बाय डिफॉल्ट मिलेगा। और हम लोगों को किस प्रकार से उस उपहास के परे जाना है और कैसे होना है? आविष्ट होना है, आविष्ट होए गीता पढ़े आनंदित मने। और भगवत गीता केवल पढ़ने मात्र से हमको आनंद की अनुभूति हो सकती है। कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं मूर्खतावश कि भगवत गीता क्या है, भगवत गीता इज ए ड्राई फिलोसॉफी और ड्राई स्पेकुलेटिव यू नो नॉलेज, यू नो ड्राई फिलोसॉफी, कुछ पढ़ने में मजा नहीं आता है, इसमें कोई लीला नहीं है, भगवान की कोई स्टोरी नहीं आती है बीच में, यू नो। कई बार क्या होता है कि भागवत पढ़ के थोड़ा एक्सटेसी आ जाता है, क्यों? क्योंकि लीला है, कहानी है। महाभारत पढ़ के बहुत एक्सटेसी आता है, रोमांचकारी उसके अंदर कहानियां है, एपिसोड्स है। चैतन्य चरितामृत में भी कोई ना कोई प्रकार का डीलिंग्स है, तो बहुत आनंद आता है। लेकिन भगवत गीता के अंदर कोई डीलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, इस प्रकार से भगवान कहते हैं, कर्मण्य भी बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण कर्मणा गहनोक्ति। इस प्रकार से सुन के कई बार फिलोसफी हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आविष्ट होकर कोई गीता पढ़ने का प्रयास करता है तो उससे भी उसको आनंद की अनुभूति हो सकती है। ही विल गेट एक्सटेसी डेफिनेटली। एंड देन हमको क्या करना है कि भगवद गीता को पढ़ के और भगवान के हृदय को आकर्षित करना है। जैसे हम हरी कथा कहते हैं, तो मैं कई बार ये बात कहता हूं कि हरी कथा कहने का दो पर्पज होता है, एक कि हम भगवान के चित्त का आकर्षण करना चाहते हैं और दूसरा हमारे चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं। तो जिस प्रकार से उस ब्राह्मण ने, उस वैष्णव ने, हाँ साउथ इंडियन ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को आकर्षित किया, उसी प्रकार से हमको भी भगवान के चित्त को आकर्षित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तब श्री चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा और तब हमको भगवद गीता के हर पन्ने पे भगवान दिखाई देंगे। नहीं तो अभी क्या होता है कि जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, हाँ तो मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, मेरी बात करता हूँ, तो जब मैं गीता खोलता हूँ तो मुझे केवल ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देता है, व्हाइट पेपर पे ब्लैक प्रिंटिंग है, दैट्स इट, और कुछ शब्द लिखे हुए हैं। लेकिन ऐसा कब दिन आएगा जब हम लोग सच में हर पेज पे भगवद गीता के भगवान श्री कृष्ण को देख पाएंगे कि किस प्रकार से वो अर्जुन की सहायता कर रहे हैं और हमारी भी सहायता करेंगे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर सर्टिफाई किया कि गीता पढ़ने का अधिकार तुम्हारे को है, उसका आलिंगन किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और आलिंगन करने पे उस ब्राह्मण को समझ में आया कि चैतन्य महाप्रभु अन्य कोई नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और उस भगवान कृष्ण ने खुद इंडिविजुअली बैठ के 1-to-1 उन्होंने उस ब्राह्मण को गीता सुनाई, गीता पढ़ाई और गीता का ज्ञान दिया। और वो ब्राह्मण जो थे वो हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएशन में रहा, जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र में रहे। तो इसी प्रकार से हमको भी समझ में आना चाहिए कि अगर हम गुरु की आज्ञा मान के अगर हम कार्य करते हैं और भगवान ने जो कहा है, अभी गीता में जितना भी उपदेश है भगवान ने कहा है ना। एक बार एक व्यक्ति आके परम पूज्य राधानाथ महाराज को कहने लगा कि महाराज व्हाट इज योर इंस्ट्रक्शन फॉर मी, आप मेरे लिए आपका क्या आदेश है। और महाराज ने कहा कि व्हाट एवर इंस्ट्रक्शन आई वांट टू गिव आई गिव इन माय क्लासेस, जो भी आदेश मैं देना चाहता हूं वो मैं अपने क्लास में दे देता हूं, अपनी कक्षा में दे देता हूं। तो मेरी जो कक्षा है वो सब आदेश ही है। तो उसमें अगर महाराज जब हमको कहते हैं तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तने सदा हरि, तो ये आदेश है, ये डायरेक्ट आदेश है। तो हमारे जो गुरु महाराज कहते, जैसे आज सुबह भी परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने इतना अच्छा क्लास दिया और कई कई शिक्षाएं उसके अंदर दी, ये सारी शिक्षाएं हमारे लिए आदेश है और उसी आदेश का हमको पालन करना है। कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे गुरु का वाक्य मुझे कहेगा और पर्सनली कोई इंस्ट्रक्शन देगा, लेकिन उसके चक्कर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु के मुख से जो निकल गया वो पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, भगवान के मुख से जो निकल गया वो धर्म है ना। आपने भागवत पढ़ा होगा, जब जब पहली बार ऐसा होता है कि यमदूतों को ऐसा सामना करना पड़ता है कि वो किसी जीव को लेने के लिए जाते हैं और खाली हाथ आना पड़ता है उनको, तो वो आके वो समझ ही नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो गया। वो यमराज को कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है इतने सालों में कि कभी कोई आके और हमको रोका है उन्होंने, अदरवाइज हम जिसको लेने जाते हैं उसको लेके आ जाते हैं, आपसे बड़ा भी कोई है क्या। हम तो समझते थे कि आप ही हमारे मालिक हो, तो क्या ये क्या माजरा जरा मुझे बताओ। तब यमराज वहां पर बैठ के उनको उपदेश देते हैं और कहते हैं कि मूर्ख, जो भगवान का नाम ले उसको कभी लेके मत आना, जो भगवान का भक्त है उसको कभी लेके मत आना, और मैं सुप्रीम नहीं हूं, मेरे ऊपर भी भगवान कृष्ण है और भगवान कृष्ण के केवल 12 लोग जानते हैं, 12 महाजन, उसमें से मैं भी एक हूं, तो ये 12 लोग केवल भगवान को अच्छी तरह से जान सके हैं। और फिर उनको एक वो शिक्षा देते और कहते हैं कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि जो भगवान के मुखारविंद से निकल गया वो धर्म है और जो भगवान के मुख से नहीं निकला वो अधर्म है। भगवान ने अगर कह दिया है कि अगर जो अर्जुन को, जैसे भगवान ने कह दिया कि अर्जुन मारो, तो ये धर्म है, ये अधर्म नहीं है। इसीलिए भगवान के मुख से निकला हुआ कुछ भी है वो धर्म है। उसी प्रकार से गुरु के मुख से निकला हुआ वाणी जो है वो हमारे लिए आदेश है। तो इस प्रकार से हम जब समझेंगे इस चीज को, तो इस प्रकार से यू नो इस साउथ इंडियन ब्राह्मण के मूड को लेते हुए हम जब गीता पढ़ने का प्रयास करेंगे, गीता समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारे को समझ में आएगा कि कितना हमको और अंदर उतरना है, अंदर प्रयास करना है और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारे गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे, और यदि हम हमारे गुरु को प्रसन्न कर पाएंगे तो भगवान बिल्कुल हमसे प्रसन्न होंगे, और बिना गुरु को प्रसन्न किए हुए भगवान को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान भी कहते हैं कि जाके पहले गुरु के पास से सीखो, ज्ञान लेके आओ और फिर मेरे पास में आना। तो गुरु ही हमको भगवान को बता सकता है, इसीलिए गुरु की आज्ञा मान के हमको गीता भागवत पढ़ना चाहिए, हरिनाम का जप करना चाहिए, और जो भी उन्होंने आदेश निर्धारित किए हैं वो हमको करना चाहिए। हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हमको प्रचार करने का कोशिश करना चाहिए। पहले अपने आप को बचाना चाहिए। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। और जब हम लोग इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय को आकर्षित कर पाएंगे, और चैतन्य महाप्रभु के हृदय को आकर्षित कर दिया मतलब हमारा काम बन गया। भगवान हमको निश्चित रूप से स्वीकार कर लेंगे, चाहे हम लोग कितने भी खराब क्यों ना हो। भगवान का जो अवतार हुआ है वो हमारे जैसे लोगों को बचाने के लिए हुआ है, कि हम लोग इतने सारे पतित लोग हैं, और इसीलिए हम तो खैर उस प्रकार से नहीं कह सकते, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अगर यदि दया ना करी हो पतित देखिया, पतित पावन नाम किशर लागिया। कि अरे मेरे जैसे पतित को देख के अगर तुम्हारे में दया भाव नहीं आया तो तुमको पतित पावन कौन कहेगा। इसके लिए मौसम पतित प्रभु ना पाई बोहार, कि मेरे से पतित इस दुनिया में कोई है ही नहीं, तो कृपया आप मुझे बचाइए। और इसी प्रकार से जब हम एक मूड लेके एक इस भाव से भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से अपनी कृपा देंगे। हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, इतने शब्दों के साथ में मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, एक बार फिर से मुझे सेवा का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु, मंगल रस प्रभु और अच्युत गिरधारी प्रभु, थैंक यू वेरी मच। माई थैंक्स टू ऑल्सो वरद गोपाल प्रभु एंड बलवंत प्रभु एंड ऑल द अदर डिवोटीज इन बलराम देश। कॉन्ग्रेचुलेशन टू दीपांशु प्रभु एंड पूजा माता जी फॉर द डॉटर, एंड ऑल्सो अवर सिंसियर प्रेयर्स फॉर द गुड हेल्थ ऑफ हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज। हम उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं कि महाराज की जो तबियत है थोड़ा अच्छी तरह से और ठीक हो जाए कोविड में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।
हरे हरि।
आवाज नहीं जा
रहा। मंगला सो जी।
हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्ण।
धन्यवाद प्रभु जी का। धन्यवाद कर दीजिए और फिर अनाउंसमेंट कर दीजिए, और भी न्यूज आ रही है।
हरे कृष्ण। हरि बोल। हमें देखा प्रभु। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑलरेडी प्रभु लोग मैसेज कर रहे हैं, बहुत आनंद हुआ। आपने बहुत अच्छे से जो है क्लास में समझाया, बहुत सारी शिक्षाएं थी उसमें। विशेषकर जो आपने एक बात कही कि जो गुरु महाराज की क्लास होती है, जो भी हमारे वर्तमान गुरु वृंद हैं, इवन जितने भी क्लास, उसमें हर क्लास में हमारे एक इंस्ट्रक्शन होता है, तो हमें पर्सनल इंस्ट्रक्शन के बजाय जो इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं उनको जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, और वो ऐसा ही समझना चाहिए हमारे लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। हरे कृष्णा। तो आज तो बहुत स्पेशल डे है, हमारे दीनानाथ प्रभु जी और माता जी का वेडिंग एनिवर्सरी भी है। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। दीनानाथ प्रभु दंडवत प्रणाम।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। वेरी गुड।
तो मालूम ही नहीं था हमें।
कांग्रेचुलेशंस प्रभु जी। कांग्रेचुलेशंस
प्रभु।
हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु से फिर सुनना है भविष्य में।
हरि बोल।
और रसामृत प्रभु जी, आपकी ये जो वाणी है केवल बलराम देश तक नहीं है, मलेशिया लखनऊ से भी भक्त लोग सुन रहे हैं जो हमारे हिंदी भागवतम के पहले यहाँ से जुड़े हुए थे। और आई थिंक अगर आप अनम्यूट कर दें तो महामंत्र प्रभु जी लगे।
हाँ
लखनऊ से कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद उन्होंने हाथ उठाया हुआ है।
एक मिनट प्रभु जी, वैसे आई थिंक म्यूट पे तो नहीं है, मैं आप करता हूँ।
अच्छा अच्छा,
एक मिनट, अनम्यूट किया है मैंने।
महामंत्र
कृष्ण प्रभु, राइट? महामंत्र कृष्ण प्रभु।
हाँ प्रभु जी,
अनम्यूट है प्रभु जी, बोल सकते हैं। एक मिनट, वापस म्यूट कैसे हो गया प्रभु जी? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। महामंत्र प्रभु,
आई थिंक वो सुन नहीं रहे। महामंत्र प्रभु जी,
ये देखो सबको अनम्यूट कर दिया है प्रभु जी, सभी लोग अनम्यूट पे।
अच्छा, माता जी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे
कृष्णा। आप जानते हो इनको?
प्रभु सबको अनम्यूट किया हुआ है, जो भी कोई कुछ कहना चाहता है या प्रश्न पूछना चाहता है तो अपने आप को वहां से उनको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। तो वो लोग कह सकते हैं।
हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत विशुद्ध हिंदी बोल रहे थे प्रभु जी।
हम हिंदी भाषी हैं प्रभु जी, हम भी राजस्थान से हैं।
मैं देखा विशुद्ध हिंदी बोल रहे हैं आप।
विशुद्ध नहीं, अशुद्ध बोल रहा था प्रभु, अशुद्ध पढ़े ना लोग। जैसे वो अशुद्ध पढ़ रहा था, मैं भी अशुद्ध ही पढ़ रहा हूँ प्रभु।
नहीं नहीं प्रभु, बहुत
अच्छा। और सभी को दंडवत प्रणाम।
चिरंजीव
दीनानाथ प्रभु,
हरि बोल।
प्रसाद वगैरह,
हरि बोल
प्रभु जी। पार्टी पार्टी बनती है,
सबको 56 वो खिलाऊंगा महाप्रसाद सबको। राधा परमेश्वर को 56 वो ऑफर करूंगा।
जय हो, जय हो, वेरी नाइस।
राधा राजन प्रभु, राधा राजन प्रभु।
हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण।
नरसिम्हा आरती गा दीजिए प्रभु जी, फिर सब हम लोगों के लिए।
हाँ ठीक है प्रभु जी।
महाराज
ये रूपराज, रूपराज प्रभु, आप मलेशिया से है ना प्रभु जी?
जी प्रभु जी, पहले
प्रभु जी।
ओके,
हरे कृष्णा। कैसे है प्रभु?
हरे कृष्णा,
हरे कैसे
है प्रभु?
हरे कृष्णा,
हरे हरे बोल, हरे कृष्णा।
या प्रभु जी,
लोगों का प्रोग्राम था और फिर में जाने का हो रही है,
प्रभु जी नरसिंह आरती गाइए।
नरसिंह आरती गाइए
सबके लिए, सबके लिए
नरसिंह
सिंह जी भगवान से हम प्रार्थना करेंगे। हरि बोल। नमस्ते नरसिंहाय, कला हृदय नरसिंह नरसिंह मधि शरणं प्रपदे अवकर कमल वरे नख अद्भुत सिंह दालिता हिरण्यकशिपु तनुभिंग कृच्छवधीत नरहरि नरसिंहदे जया भक्त प्रहला जय भक्त प्रला जय भक्त प्रला जय भक्त प्रला जय प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु पद शिल प्रभु पद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव बोलो श्री भक्ति विघ्न विनाशक नृसिंह देव भगवान की
जय
प्रहलाद महाराज की
जय
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 गुरुदेव।
जय
कोटि वैष्णव बंद की
जय
वंदे
हरि हरि
हरे कृष्ण हरे
हरे कृष्ण
पावने अनंत कोटि वैष्णव बृंद की
जय
जय हरि बोल
गोपराज प्रभु
हरि बोल प्रभु हरे कृष्ण
कहाँ मलेशिया में मलेच्छों के बीच में कैसे हैं आप
चल रहा है प्रभु जी सब नरसिंह भगवान की
आप अकेले हैं कि माता जी भी है माता जी भी है कि आप अकेले हैं वहाँ पे
जी प्रभु जी वो अभी हम लोग होली में गया था ना हम लोग का मथुरा का प्रोग्राम था वृंदावन नगर जाने का